ओम शांति।
आज का प्रातः क्लास है 16 अगस्त 1968।
टुडेस मॉर्निंग क्लास इज शेड्यूल्ड 16 अगस्त 1968।
शिव भगवान वाच, अपन को आत्मा समझ करके बैठो।
शिव भगवान वाच, कंसीडर योरसेल्फ एज अ सोल सिस्टम।
शिव भगवान वाच माना ही शिव बाबा समझाते हैं।
शिव भगवान वाच इटसेल्फ मींस इट इज शिव बाबा हु एक्सप्लेन्स इट।
समझाने वाला कोई देहधारी नहीं है।
The one who explains isn't a bodily being.
देहधारी आत्मा उसे कहा जाता है जिसकी बुद्धि देह में धरी हुई हो या जिसकी बुद्धि को देह आकर्षित करती हो, उसको कहा जाता है देहधारी।
The one whose intellect is engrossed in the body or whose intellect is attracted by the body is called a bodily soul. Such one is called a bodily being.
जिसमें प्रवेश करता है वो देहधारी हो सकता है।
The one he enters can be a bodily being.
परंतु प्रवेश करने वाला वो सुप्रीम रूह देह को क्षण मात्र भी धारण करने वाला नहीं है।
But the supreme soul who enters him isn't the one who takes on a body of his own even for a second.
वो बैठ बच्चों को समझाते हैं।
He sits and explains to the children.
कि अपन को आत्मा समझ करके बैठो।
Consider yourself as a soul and sit.
तो कितना ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम रूह बैठ करके हमको समझाते हैं।
So, how attentive we should be, for the supreme soul sits and explains to us.
63 जन्म तो देहधारी मनुष्य गुरु आत्माएं हमको समझाती रही।
After all, the souls of bodily beings, human gurus, continue to explain to us in the 63 births.
उन्होंने तो हमको नहीं समझा पाया कि हम आत्मा है देह नहीं है।
They couldn't explain to us that we are souls, not the body.
और ही देह में बुद्धि फंसती चली गई।
Our intellect kept getting entangled in the body all the time.
अभी तो समझाने वाला स्वयं रूहों का बाप है।
Now, the one who explains to us is in fact the father of the souls himself.
जिसे कहते हैं रूहानी बाप।
He is called the spiritual father.
समझाते हैं क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो।
He explains to you for you all are brothers.
आत्मा आत्मा भाई भाई हो।
You are souls who are brothers for each other.
एक ही बाप से वर्षा लेना है।
You have to take the inheritance from the one father alone.
क्या एक बाप से वर्षा लेने का मतलब क्या हुआ?
What? Students, we have to take the inheritance from the one father. What does to take the inheritance from the one father mean?
एक बाप से वर्षा लेने का मतलब है कि बहुत तेरे ऐसे भी हैं जो एक बाप से वर्षा लेने की बात भूल करके औरों में भी लटक पड़ते हैं।
To take the inheritance from the one father means there are many of such ones too who forget the idea of taking the inheritance from the one father and cling to others.
औरों की समझाने को भी स्वीकार कर लेते हैं।
They accept the explanations of others too.
और बाप के वर्षे से वंचित रह जाते हैं।
And they deprive themselves of the father's inheritance.
हूबहू जैसे कि कल 5000 वर्ष पहले भी बाप से वर्षा लिया था, ऐसे ही अभी भी एक ही बाप से वर्षा लेना है।
The way you had taken the inheritance a cycle meaning 5000 years ago, in the same way you have to take the inheritance from the one father alone even now.
कोई दूसरे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि से वर्षा नहीं लेना है या उनके फॉलोअर्स से वर्षा नहीं लेना है अथवा उनके आधार मूर्त या उनके जो बीज हैं उनसे भी हमको वर्षा नहीं लेना है।
You mustn't take the inheritance from anyone else like Abraham, Buddha, Christ, etc. their followers, or you mustn't take the inheritance from their root form souls or their seeds either.
वर्षा नहीं लेने का मतलब है उनकी बातों को कान पर नहीं धरना है।
You mustn't take the inheritance means you mustn't heed to their words.
इसलिए बोला
कि
अनेकों से ज्ञान सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा।
If you listen to the knowledge from anyone, knowledge will become adulterated.
फिर अब व्यभिचारी वर्षा सूर्यवंशी नहीं मिल सकता।
Then you can't receive the unadulterated सूर्यवंशी inheritance.
ज्ञान भी व्यभिचारी और अव्यभिचारी होता है।
Knowledge is also adulterated and unadulterated.
एक बाप से सुनेंगे तो आप भी विचारी ज्ञान का वर्षा मिलता है।
If you listen to the one father, you receive the inheritance of unadulterated knowledge.
औरों से सुनेंगे तो भी विचारी वर्षा मिल जाएगा।
If you listen to others, you will receive adulterated inheritance.
अभी तुम समझते हो।
Now you understand.
कि हम सब आज सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे।
We were all in the capital of the ancient deities.
आदि माना ही क्या?
What does ancient itself mean?
आदि माना सतयुग का आदि नहीं।
Ancient doesn't refer to the beginning of the golden age.
सतयुग की नई दुनिया को भी आदि करने वाला कोई है।
There is someone who begins even the new golden age boy.
सतयुग में तो रूहानी बाप जाता ही नहीं।
The spiritual father doesn't go to the golden age at all.
तो जरूर सतयुग से पहले संगम युग में बाप आकर पुरुषोत्तम बनाते हैं।
The father certainly comes before the golden age, that is, in the confluence age, and makes you Purushottam.
और बाप से वर्षा मिलता है देवी देवताओं की राजधानी का।
And you receive the inheritance of the divine capital from the father.
जहाँ सूर्यवंशी थे।
Just the सूर्यवंशी were present there.
और कोई भी दूसरे वंश के नहीं थे।
There weren't the souls from any other dynasty.
चंद्रवंशी भी पीछे आए हैं।
The चंद्रवंशी have also come later.
क्या?
No.
ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में भी जब माला का सिलेक्शन होता है जो चंद्रवंशी आत्माएं पीछे आती है या पहले आती है।
Even in the confluence age Brahmin world, when the selection of the beads of the rosary takes place, do the Chandravanshi souls come later or earlier?
विजयमाला भी बाद में आवेगी।
Students, later. The Vijayamala will also come later.
चंद्रवंशी आत्माएं पीछे पीछे आती है सूर्यवंशियों के पीछे पीछे उनको फॉलो करती है।
The चंद्रवंशी souls come after the सूर्यवंशी, they follow them.
रानियां किसको फॉलो करती है? राजाओं को फॉलो करती
है।
तो बाप आकर के अव्वल दीन स्थापन करती है। दीन धर्म को कहा जाता है। अल्लाह अव्वल दीन की कहानी प्रसिद्ध है।
The story of Allah Awwal Deen is famous.
मुसलमान लोग भी इस बात को मानते हैं।
Even the Muslims accept this fact.
कि पहले पहले इस दुनिया में अल्लाह का राज्य था।
That earlier there was the rule of Allah in this world.
बाप बैठ समझाते हैं कि तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व का मालिक कैसे बन सकते हो? कैसे बन सकते हो? माम एकम याद करो, कोई दूजम को याद न करो।
स्टूडेंट कमेंट, Remember me alone. Don't remember anyone else.
कोई दूसरों की भी बात सुनेंगे, कान पर धरेंगे, दिल में धरेंगे, तो उनकी भी याद आती रहेगी।
Even if you listen to others' words, keep to it. Take it to your heart. You will remember them as well.
फिर विश्व के मालिक नहीं बन सकते।
Then you can't become the master of the world.
नई विश्व के मालिक बनना है तो सिर्फ मेरे को याद करो।
If you want to become master of the new world, remember me alone.
तुम सब आत्माएं भाई भाई हो।
You say, I am your brother.
भाई भाई हो ये याद क्यों दिलाते हैं?
Why does he remind us that we are brothers?
याद इसलिए दिलाते हैं कि पक्का बुद्धि में बैठ जाए कि तुम्हारा बाप एक है।
He reminds us so that it sits firmly in our intellect that our father is the one.
दूसरा कोई धर्मगुरु या देहधारी तुम्हारा बाप नहीं है।
No other religious guru or bodily being is our father.
ऊंचे से ऊंचे भगवान एक ही है। उस सच्चे बाप के बच्चे साथ साहबजादे हो। परिवार में तीन स्टेजेज होती है खास।
There are especially three stages in positions in a family.
साहब, बीवी और बाकी बच्चे सब गुलाम।
The master meaning sahab, his wife meaning baby, and rest all the children are gulam meaning servants.
रचना क्या हो गई? बाप की।
What is the creation? The father.
बाप को डायरेक्शन देने वाली या बाप के डायरेक्शन पर चलने वाली?
Is it the one who gives directions to the father? Or the one who follows the father's direction?
चलने वाली।
It is the one who follows it.
ये बाप बैठ समझाते हैं।
The father sits and explains this.
क्या?
No.
रचना वो जो रचयिता के पूरा ही कंट्रोल में हो।
The one who is completely in control of the creator is the creation.
अगर रचना बाप के कंट्रोल में नहीं है तो वो रचना रचना नहीं है।
If the creation isn't in the father's control, that creation isn't the creation.
कंस का मिसाल देते हैं।
The example of Kans is given.
कंस का बाप कंस को क्या समझ बैठा?
What did the father of Kans consider Kans to be?
अपनी रचना समझ बैठा.
He considered Kans to be his creation.
परंतु क्या वो उसके कंट्रोल में था?
But was he under his control?
उग्रसेन के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर था.
He was absolutely out of Ugrasen's control.
तो भी सत्ता उसके हाथ में देता चला गया.
So he, meaning Ugrasen, kept giving him authority.
आखिरी रचना हाथ से निकल गई.
Ultimately, his creation went out of his control.
नहीं तो रचना रचेता बाप की मुट्ठी में रहनी चाहिए.
Otherwise, the creation should be in control of the creator father.
आज रावण राज्य में क्या हाल है?
What is the condition in today's kingdom of Ravan?
रचना रूपी जो बच्चे हैं, वो माँ बाप के कितने कंट्रोल में रहते हैं?
So what extent are the creation in the form of children in control of the parents?
एकदम कंट्रोल से बाहर.
They are fully out of their control.
होना चाहिए इतना कंट्रोल कि भल बच्चे नौजवान भी हो जाएं, तो भी अपने को बाप का गुलाम समझ करके रहे.
Rather, they should be so much in control that even if the children turn into youth, they should still consider themselves as their father's servants.
बड़ा भी बच्चा हो तो भी बाप के सामने आंख उठाने की हिम्मत न पड़े.
Even if the child grows up, he shouldn't have the courage to raise his eyes in front of his father.
उसको कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन.
This is called the foundation of the ancient deity religion.
पारिवारिक व्यवस्था ऐसी मजबूत हो कि धर्म सत्ता राज्य सत्ता पूरे परिवार की एक हाथ में होनी चाहिए.
The family unit should be so strong that the religious and political power of the entire house should be in the hands of the one.
तब कहेंगे साहब जादे.
Then they will be called साहब जादे.
अगर पूरे कंट्रोल में नहीं है रचना रूपी बच्चे तो साहब जादे की बजाय क्या कहे जाएंगे? हराम जादे.
If the children in the form of creation aren't completely in control, what will they be called instead of Sahabzade? Haramzade, meaning illegitimate ones.
ये बातें बाप बैठ समझाते हैं.
The father sits and explains these concepts.
क्या? ये बाप की पहचान है.
What? This is the point of the father's recognition.
क्या कि साहबजादे साहबजादियां साहब और बीबी परिवार में उनकी क्या स्टेज होनी चाहिए?
What stage the साहबजादे the साहबजादी the साहब and the wife should have in a family? Sahabzade and Sahabzadi means sons and daughters of the master.
ये foundation कहाँ डाला गया? उस बाप की सीमत पर ही बाप के साथ बाप का योग लगा देंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे.
Where was his foundation laid? Student, the confluence age. If you have yoke with the father according to his Srimad itself, your sins will be destroyed.
किस बाप के साथ?
विथ विच फादर?
जो ये बातों का क्लैरिफिकेशन देते हैं, समझानी देते हैं।
The one who gives the clarification, the explanation of these concepts.
वो एक ही बाप है समझानी देने वाला।
It is the one father alone who gives the explanation.
और कोई दूसरा बाप इन बातों की असली समझानी नहीं दे सकता।
None of the other fathers can give the real explanation of these concepts.
तो उस बाप की याद करने से तुम्हारे सब पाप कट जावेंगे, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जावेंगे।
So, when all your sins are destroyed by remembering that father, all of your sorrow will be removed.
कहाँ? सतयुग में? सतयुग में नहीं।
Where? In the golden age? Not in the golden age.
तुम सावजाने बन जाएंगे 100%, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। इसी दुनिया में, इसी शरीर से।
When you become 100% sahabzade, all of your sorrow will be removed in this very world through this very body.
इसलिए मुसलमान समझते हैं इस बात को कि जब दुनिया की कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे।
This is why the Muslims understand this fact. That when the destruction of this world takes place, God's servants will stay very comfortably.
कहते भी हैं मालिक तेरे बंदे हम।
They also say, Master, we are your servants.
तब बंदे वंदना करते हैं।
It is then that the servants serve him.
सर झुकाते हैं।
They bow their head.
अगर सर न झुकावे, श्रीमत पर न चले, अपनी मत चलावे, सर उठाए लेवे, तो वो बंदे नहीं है, वंदना करने वाले नहीं है, कल ग्लानी करने लग पड़ेंगे।
If they don't bow their head, if they don't follow श्रीमत, If they act as per their own opinion and raise their head, they aren't his servants. They aren't the ones who serve him. They will start defaming him tomorrow.
ऐसे ग्लानी करने वाले,
those who defame him in such a way,
बाप से आंख से नहीं मिलाते हैं,
don't exchange glances with a father.
बाप से जब हमारी आंखें मिलती हैं, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं।
When your eyes meet the father's eyes, all of your sorrow is removed.
आंखों के देखने से ही पता चल जाता है कि एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम भाव है।
Just by the way of seeing with the eyes, One comes to know how much love one has for the other.
आंखें दिल की बात बाहर बता देती है।
The eyes express the feeling within the heart.
आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं।
He explains the meaning of exchanging glances too.
क्या हुआ?
What does it mean?
आँखों से वाइब्रेशन निकलते हैं।
Eyes emit vibrations.
बाप सुख का सागर है।
The father is the ocean of happiness.
तो कैसे वाइब्रेशन फील होने चाहिए?
So, what kind of vibrations should someone feel? When he sees him,
देखने वालों को बाप की दृष्टि से ही सुख के वाइब्रेशन फील होने चाहिए।
Those who see him should feel the vibrations of happiness as soon as the father's drishti falls upon them.
अगर सुख के वाइब्रेशन फील नहीं होते हैं, इसे क्या साबित हुआ?
If they don't feel the vibrations of happiness, what does it prove?
जैसी दृष्टि वैसी शक्ति में बाप का रूप दिखाई देता है।
They see the father's form like the same grows. As is the vision, so the world appears to them.
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो।
Consider yourselves as a soul and remember the father.
देवांग में रहकर के बाप को याद करते हैं तो अपना ही अहंकार चढ़ जाता है।
When you remember the father by being very conscious, your own ego inflates.
बाप से जिसे प्यार पूर्वक आंखें मिलनी चाहिए वो आंखें मिला ही नहीं सकते।
The way you should lovingly exchange glances with the father, you won't be able to exchange glances that way.
ये है याद की यात्रा।
This is the journey of remembrance.
दुनिया में भी ऐसे ही होता है।
The same thing happens in the world as well.
कोई को घड़ी दो घड़ी प्यार से देख लेंगे तो याद आता रहेगा, या कोई को धिक्कार से देखेंगे तो याद आएगा।
Will you keep remembering someone if you see him lovingly for a moment or two, or will you remember him if you see him with hatred? Student, lovingly.
कोई एक दूसरे को क्रोध से देखेंगे तो याद आवेगा, या प्यार से देखेंगे तो याद आवेगा।
Will you remember someone if you see him angrily or lovingly? Student, lovingly.
ये दृष्टि का नियम है, लगाव पूर्वक जिसको देखा जाता है वो याद जरूर आता है।
This is the tendency of the eyes. The one whom you see with attachment, you remember him for sure.
इसको योगाग्नि कहा जाता है।
This is called the fire of yoga.
क्या?
Yes.
रावण ने भी देखा था।
रावण also saw him.
रावण ने भगवान राम को प्यार की दृष्टि से देखा था कि हितारत की दृष्टि से देखा था।
Did Ravan see Lord Ram lovingly or scornfully?
घृणा की दृष्टि से देखा था।
He saw him with hatred.
तो वो याद स्थाई नहीं हो सकती।
So that remembrance can't be everlasting.
मुक्ति तो मिल जाएगी क्योंकि फिर भी याद तो किया ना।
He will certainly attain mukti. It is because he at least remembered him, didn't he?
लेकिन जो आत्मा का लक्ष्य है।
However, the aim of the soul.
आत्मा का लक्ष्य क्या है?
What is the aim of the soul?
आत्मा का लक्ष्य है सुख भोगे।
The aim of the soul is to experience happiness.
कोई आत्मा ये चाहती है हम दुख भोगे?
नहीं,
कोई नहीं चाहती।
Does any soul want to suffer sorrow? Students, no. No one does.
कोई आत्मा ये चाहती है कि हम लगातार परमधाम में पड़े रहे शांति में सोते ही रहे।
Does any soul want to constantly stay in peace in the supreme abode and just keep sleeping?
कोई नहीं चाहता।
No one does.
सब चाहते हैं कि हमारा शरीर भी रहे, जीवन भी रहे, और जीवन में रहते रहते हम क्या भोगे?
Everyone wants that they should have their body and they should be alive. And what should they experience by being alive?
सुख और शांति दोनों का भोग करें।
They should experience both happiness and peace.
तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है।
So, this is the aim of our life.
आत्माओं का लक्ष्य है।
It is the aim of the souls.
देह अभिमानियों का ये लक्ष्य नहीं होता है। तो ऐसी योगाग्नि में, कौन सी योगाग्नि में?
So, in such fire of yoga, which fire of yoga?
प्यार की लगन की अगन में तुम्हारे जो भी पाप है जन्म जन्मांतर के, वो सब भस्म हो जाएंगे।
In the fire of love and dedication, all your sins of many births will be burned to ashes.
और अंदर से मैल भरा हुआ हो तो?
And what if someone is full of dirt within?
है? दृष्टि तो लेते हैं, लेकिन दृष्टि लेते लेते नींद आ रही है, तो प्यार भरा हुआ साबित होगा?
They don't take drishti, but if they are feeling sleepy while taking drishti, will it be proved that they have love?
साबित हो जाएगा सारी सभा के बीच में, आसपास वाले समझ जाएंगे। मैंने कहा बाप से प्यार नहीं है, नहीं तो जिससे प्यार होता है वो सामने होता है तो नींद आती है क्या? नहीं।
It will be proved in front of the entire gathering. All those sitting nearby will understand that they don't have love for the father. Otherwise, do you feel sleepy when the one you love is in front of you? No.
हाँ, रावण के भैया को मकरण से प्रीति हो सकती है।
Yes, they can have love for Ravan's brother Kumbhakaran.
क्या?
What?
जो लंबी नींद सोता है अज्ञान की नींद में, और दूसरों को भी अज्ञान की नींद में लंबे टाइम तक सुलाई देता है संग के रंग से।
The one who sleeps in the sleep of ignorance for long, and also makes others sleep in the sleep of ignorance for long by the color of his company.
तो पाप भस्म होने का तरीका बताया कि जल्दी से जल्दी पाप कैसे भस्म हो सकते
हैं। So the method to burn sins into ashes was mentioned. As to how sins can be burned to ashes as soon as possible.
इस समय तुम सब पाप आत्मा
हो। All of you are sinful souls at this time.
आत्मा तो हो, अपन को आत्मा तो समझते हो, लेकिन कैसी आत्मा हो?
You are certainly souls. You do consider yourselves as a soul. However, what kind of a soul are you?
पाप आत्मा हो, पाप के बोझ से सब दबे हुए हो।
You are sinful souls. Everyone is buried under the burden of sins.
जब आत्मा पाप के बोझ से दबी हुई है तो ऊपर की ओर उड़ेगी, ऊंची स्टेज में उड़ेगी या नीचे जाएगी?
When the soul is buried under the burden of sins, will it fly upwards in a high stage or will it go downwards? Students, it will go downwards.
Best इंद्रियों की ओर जाएगी या शेष इंद्रियों का सुख भोगने की ओर जाएगी?
Will it go towards the corrupt indriya or will it go towards seeking the pleasure of the elevated indriya?
ग्रस्त इंद्रियों की तरफ बार बार बुद्धि को खींच ले जाएगी।
It will repeatedly attract the intellect towards the corrupt indriya and take it back.
तो तुम सब भ्रष्टाचारी हो गए हो।
So, you have all become corrupt.
अभी तुम सब पापात्मा हो और भ्रष्ट आचरण करने वाले, भ्रष्ट इंद्रियों में रमण करने वाले हो गए हो।
Now, you all are sinful souls and have become the ones who perform corrupt actions and who take delight in corrupt indriya.
इसलिए ये दुनिया है ही दुखधाम।
This is why this world is the very abode of sorrow.
भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट कर्म होंगे या श्रेष्ठ कर्म होंगे?
Will corrupt actions or elevated actions be performed through the corrupt indriya? Student, corrupt actions,
व्यक्त कर्म करते करते दुख की दुनिया जहरी होती जाती है।
The world of sorrow deepens as corrupt actions are performed.
अभी भी 70 साल बाप को आए हुए हो गए, बच्चे ज्यादातर दुखती दुनिया में गहरे जाते हैं या दुख की दुनिया से उपराम होते जा रहे हैं, क्या अनुभव करते हैं?
Even now, it has been 70 years since the father came. But do the children mostly go deeper into the world of sorrow? Or are they going beyond the world of sorrow? What do they experience?
70 साल से ऊपर हो गए।
It has been more than 70 years.
अपने अपने दिल से पूछे कि हमारे मन बुद्धि की स्टेट क्या है?
Everyone should ask their heart what the stage of their mind and intellect is.
अपन से पहले पूछना चाहिए।
You should ask yourself first.
दूसरों से प्रश्न बाद में करें।
You should ask others later.
पहले अपन से पूछना चाहिए, दुखधाम वासी हो या सुखधाम वासी हो?
Firstly, you should ask yourself whether you are the residents of the abode of sorrow or the abode of happiness.
Narakavasi ho ya swargvasi ho?
Whether you are the residents of hell or heaven.
Kya jawab aayega?
What will the answer be? Students, the residents of hell.
तुमने तो बहुत ही पाप किए हैं।
You have committed a lot of sins.
ये क्या बात? हम बाप के बच्चे हैं? ऊंचे बाप के बच्चे हम बनते हैं और फिर हमको ही बाप कहते हैं क्या?
What is this? We are the father's children. We become the children of the highest of the high father. And the father tells this to us. What?
तुमने तो बहुत ही पाप किए हैं। अरे?
You have actually committed a lot of sins. अरे?
ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे पाप आत्मा होने चाहिए या पुण्यात्मा होने चाहिए? तो ये क्या कह दिया?
Should the children of the highest of the high father be sinful souls or noble souls? Students, noble souls. So what has he said?
इसलिए कह दिया कि रावण के राज्य में द्वापर युग से संग के रंग में आते आते द्वैतवादी दुनिया के दो दो मतों से प्रभावित होते होते हम बहुत पापात्मा बन गए।
He said that because we have become very sinful souls in Ravan's kingdom by coming in the color of company since the Copper Age, by being influenced by the dualistic opinions of the dualistic world.
कोई बड़े आदमी का बच्चा हो, मान लो महाराजा राजा का बच्चा हो और एक रंग का बच्चा हो।
Suppose there is a son of a big person. He is the son of an emperor or a king. And there is also a son of a beggar.
दोनों कुसंगत में फंस जाएं, तो ज्यादा कुसंगी ज्यादा पापात्मा कौन सा बनेगा?
If both of them fall into bad company, who will keep more bad company and become a more sinful soul?
तो हम भी ऊंचे ऊंचे बाप के बच्चे थे।
Student, the king's son. So, we were also the children of the highest of the high father.
और धर्म की आत्माएं जो हैं, इतने ऊंचे बाप के बच्चे नहीं थे।
The souls of the other religions weren't the children of such a high father.
फिर भी हम हम भी कुसंग में फंस गए तो बहुत ज्यादा पाप आत्मा बन गए, ये कारण हुआ।
We were also influenced by bad company and we became very sinful souls. This was the reason.
नहीं तो हमको बहुत पुण्य आत्मा होना चाहिए था।
Otherwise, we should have been very noble souls.
इसको कहा जाता है रावण राज्य का प्रभाव।
This is called the influence of Ravan's kingdom.
हमारे ऊपर किसका प्रभाव पड़ गया?
Who are we influenced by?
रावण का प्रभाव पड़ गया।
We are influenced by Ravan.
माना दस शीश वाले का प्रभाव पड़ गया।
It means we are influenced by Ravan with 10 heads.
दस शीश माना?
What do 10 heads refer to?
दस मना बुद्धि के आधार पर दस प्रकार की बातें बनाने वालों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ गया।
We were influenced by the ones who make 10 kinds of stories based on 10 kinds of mind and intellect.
सबसे जास्ती रावण से हम प्रभावित हो गए।
It is we who were influenced by Ravan the most.
हाँ, कोई द्वापर के आज में ही प्रभावित हो गए और कोई कलयुग के अंत में जाकर प्रभावित हुए।
Yes, some were influenced in the very beginning of the Copper Age, and some were influenced by the end of the Iron Age.
इतना तो अंतर पड़ता है।
There is certainly this much difference.
बाकी ऐसा कोई बाप का बच्चा नहीं है जो 63 जन्म पूरे होते होते बहुत पापात्मा न बनता हो।
There isn't any child of the father who doesn't become a very sinful soul by the end of his 63 births.
तो इसको कहा जाता है रावण राज्य, जो बर्बसी हमको अपने प्रभाव में लेकर के बहुत पापात्मा बना देता है।
So this is called the kingdom of Ravan, who forcibly takes us in his influence and makes us a very sinful soul.
और सतयुग को कहा जाता है राम राज्य।
And the golden age is called Ram's kingdom.
Just opposite.
They are exactly opposite to one another.
वहाँ कैसे संग के रंग में आते हैं?
एक बाप के।
नहीं, सतयुग में कहा एक बाप का संग होता है।
How are you colored by the company there? Students, the one father. No. Where is there the company of the one father in the golden age?
Satyug mein Ram Rajya hota hai na?
There is Ram's kingdom in the golden age, isn't there?
Ram ka sthapan kiya hua rajya hai. Isliye Ram Rajya kaha jata hai.
It is the kingdom established by Ram. This is why it is called Ram's kingdom.
उस राम राज्य में आसुरी राज्य नहीं होता है।
There isn't a demonic kingdom in that kingdom of Ram.
आसुरी धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं तो हो सकती हैं, लेकिन उनका राज्य नहीं होता है।
There may be the souls who convert to the demonic religions, but there isn't their kingdom.
Rajya kiska hota hai?
Whose kingdom is prevalent there?
Rajya Suryavanshiyon ka hota hai.
There is the kingdom of the Suryavanshis.
Jo ek baap se prabhavit hone wale hote hain.
Who are the ones who are influenced by the one father?
To tum bhi aise samjhai sakte ho.
So, you can also explain in this way.
कि प्रभावित माना प्रजा।
The one who is influenced is a subject.
अनेकों से प्रभावित होने वाले रावण संप्रदाय।
Those who are influenced by many belong to Ravan's community.
और एक से प्रभावित होने वाले
राम
संप्रदाय बनते।
And those who are influenced by the one belong to Ram's community.
भले कितने भी बड़े बड़े बैठे हो, उन बड़े बड़े आदमियों से भाषण करते समय तुम्हें प्रभावित होने की दरकार नहीं है।
No matter how big the people sitting somewhere are, you needn't be influenced by them while delivering a speech.
तुमको ऐसी बातें समझाने में कोई हर्जा नहीं है।
You don't have any problem in explaining such concepts.
तुम तो कहते रहते हो कि हम अपनी बात नहीं सुनाते हैं। भगवान वाच।
In fact, you keep saying, we don't narrate our ideas. It is Bhagwan Vaj.
Bhagwan baat sunate hai, wo baat hum aapko sunate hai.
We narrate those words which God the Father narrates.
Wo kahe chala bada Bhagwan ke baatein sunane wala. Kya proof hai tere paas ki tu Bhagwan ki baatein sunata hai?
They will say, Here comes the great one who narrates the words of God. What proof do you have that you narrate the words of God?
तो बताओ, क्या प्रूफ देंगे?
So, tell me, what proof will you give?
गीता? गीता तो मनुष्य की लिखी हुई?
Students, the Gita. The Gita? The Gita is in fact written by the human beings.
जो गीता दुनिया में मिल रही है भगवान ने गाई है?
नहीं,
कौन है भगवान? अरे यही तो झगड़ा है।
स्टूडेंट्स, इट इज sung by God. The Gita which you get in the outside world, has it been sung by God? Student, no. The Gita which has been sung by God is in the conferences. Who is God? Another student, God is sitting in front of us. Arre, it is on this point that the argument is going on.
वो कहेंगे तुम्हारा भगवान उवाच है, वो कौन है जो ऐसी ऐसी बातें उवाच करता है?
They will say, who is your God who speaks, who narrates such topics?
तुम्हारा भगवान उवाच नहीं करता है, तुम उवाच करते हो।
It isn't your God who narrates them, but it is you instead.
तुम्हारी गर्दन पकड़नी चाहिए। तो क्या जब अपनी गर्दन कैसे छोड़ाओगे?
We should grab your neck. So, what will be your answer? How will you free yourself?
नहीं पकड़ेंगे? वो तो पकड़ेंगे।
Student, we won't let them grab it. You won't let them grab it? They will grab it.
तुम झूठ कहते हो भगवान वाच?
Saying, you lie, saying भगवान वाच. Student, no.
नहीं नहीं?
जब इधर जब हमें इधर क्या करेगा इधर भाई नहीं नहीं भाई राम का तो उनको बताना
उनको
एक बात सुनूंगा आपको आपकी कुछ
वो बात अलग.
No, no. A student. No, when I went to give the knowledge to a brother, He told me, I will listen to the one father, I won't listen to you. That is a different thing.
यहाँ सवाल पैदा होता है, तुम जो बार बार कहते हो, भगवान कहते हैं, हम नहीं कहते, तो वो भगवान कौन है?
Here, the question that arises is, the thing which you repeatedly say, God says it, God says it, it isn't we who say it. So, who is that God?
वो भगवान के बारे में हमें प्रूफ दो.
Give us proof of that God.
चलो.
नहीं. सीधा सीधा प्रूफ बताओ.
Student, come with us. Come where? Student comments. No. Give them the direct proof.
कि भगवान बाप आते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि रचते हैं या नहीं रचते है? रचते ही।
When God the Father comes, does He create the new world through Brahma or not? He does.
Proof है कि सारी दुनिया में इतना बड़ा ब्राह्मणों का परिवार जो ब्रह्मा ने रचा है माउंट आबू में बैठ करके, सारी दुनिया के शहर शहर में और भारत के तो गांव गांव में वो ब्राह्मण परिवार ब्रह्मा की औलाद ब्रह्मा कुमारी विद्यालय फैला हुआ है।
The proof is such a big Brahmin family which Brahma created in this entire world sitting at Mount Abu, that Brahmin family, Brahma's progeny, that is the Brahma Kumari Vidyalaya, is spread in every city of the world and in each and every village of India.
Ye proof hai pakka.
This is a concrete proof
ki hum Brahma ki aulaad hai,
that we are Brahma's progeny.
Aur jo Brahma ki aulaad hai wo hi pakke brahman hai.
And those who are Brahma's progeny, they themselves are firm Brahmins.
Baki to aaj ke Brahmin maas sharab vaishyavritti kya kya karte pakde jate.
As regards today's Brahmins, they are caught eating meat, drinking alcohol, indulging in prostitution and so on.
Hum vastav mein Brahma ki original santan hai.
We are actually the original children of Brahma.
Brahma Kumar hai, Brahman hai.
We are Brahma Kumar, Brahmin.
Aur wo Brahman sari duniya mein phail rahe hai.
And those Brahmins are spreading worldwide.
तो क्या प्रूफ नहीं है तुम्हारी आंखों के सामने?
So, isn't the proof right in front of your eyes?
इतना बड़ा परिवार दुनिया में कोई और कोई संस्था है?
Does any other organization have such a big family in the world?
कोई और ऐसा बड़ा परिवार है जो एक चूल्हे पर रोटी खाने के लिए तैयार हो?
Is there any other big family ready to have roti prepared on the same stuff?
Nahi hai.
There isn't.
Ye pakka proof hai ki Bhagwan Baap aakar ke Brahma ke dwara Vedavani sunaye rahe hai.
This is the concrete proof that God the Father has come and is narrating the Vedavani through Brahma.
तो तुम भगवान वाच कहते रहो।
So, keep saying भगवान वाच।
कोई झगड़ा करे तो प्रूफ दे दो।
If someone argues with you, give them proof.
शिव भगवान वाच बोलो।
Say, शिव भगवान वाच।
क्या?
हाँ। What? Students, शिव भगवान वाच। Yes.
ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है।
Brahma isn't God.
Brahma agar bhagwan hota to Brahma ki duniya mein pooja hoti, mandir hote.
Had Brahma been God, he would have been worshipped in the world. His temples would have been present.
Murtiyan banti.
And his idols would have been made.
Unki to murtiyan bhi nahi hai, mandir bhi nahi hai, pooja bhi nahi hoti.
In fact, he neither has idols, temples, nor is he worshipped.
हाँ, ब्रह्मा के मुख से उवाच किया।
Yes, he did narrate the knowledge through Brahma's mouth.
वेदवाणी बिना उवाच किए निकलेगी? उवाच करना पड़े? तो किसने उवाच किया?
Will the Vedvani come out without it being narrated? Someone has to narrate it. So, who narrated it?
राम ने उवाच किया, कृष्ण ने उवाच किया, इब्राहिम बुद्ध त्राई के बड़े बड़े ग्रेट फादर्स ने उवाच किया, किसने उवाच किया?
Did Ram narrate it? Did Krishna narrate it? Did Abraham, Buddha, Christ, or the great religious fathers narrate it? Who narrated it? Students, Ram.
Ram, you what here? What again?
Did Ram narrate it? You got tricked again.
Shiv Bhagwan Vach.
Shiv Bhagwan Vach.
उस भगवान ने वाच किया जो सदा शिव कहा जाता है.
That God narrated it, who is called सदा शिव.
क्या? एक क्षण भी ऐसा नहीं पकड़ा जाएगा उसके जीवन में जो अकल्याणकारी हो.
What? You won't be able to spot a single moment in his life which would bring harm.
जो भी करता है कल्याण करता है. जो भी बोलता है कल्याण की बात बोलता है.
Whatever he does, he brings benefit. Whatever he speaks beneficial words.
जहाँ भी देखता है कल्याण की दृष्टि से देखता है.
Wherever he sees with a beneficial दृष्टि.
जहाँ भी जैसे भी वाइब्रेशन छोड़ेगा क्रोध का भी वाइब्रेशन छोड़ेगा तो भी कल्याण ही कल्याण भरा हुआ होगा.
Wherever and however he spreads vibrations, even if he emits the vibrations of anger, still they will be full of benefit.
कल्याण का ही नाम शिव है.
Shiv is the very name of benefit.
और सच्चाई से ही कल्याण होता है.
And benefit is brought about only through truth.
झूठ से कभी कल्याण नहीं होता.
Benefit is never brought about through falsity.
सत्य को ही शिव कहा जाता है. सत्यम शिवम. और जो सच्चाई है कल्याणकारी है वो ही सुंदर है.
Truth itself is called Shiv. सत्यम शिवम. And the one who is true and beneficial, he himself is beautiful.
इसको भगवान कहा जाता है.
He is called God.
अंग्रेज लोग भी मानते हैं God is truth.
Even the English accept it, saying God is truth.
सच्चाई को भगवान कहा जाता है.
Truth is called God.
तो उस शिव भगवान वाच जिसको कहा जाता है हम सब उसकी संतान है.
So, the one for whom it is said, Shiv Bhagwan Vach, we are all his children.
उसकी संतान है.
Whose children are we?
हम शिव की संतान है.
We are Shiv's children.
वास्तव में हम ब्रह्मा की भी संतान नहीं है. पक्का अगर कहा जाए तो.
As a matter of fact, we aren't even Brahma's children actually.
क्यों?
Why?
क्योंकि हम तो आत्मा हैं.
It is because we are in fact souls.
हम आपस में एक दूसरे को भाई बहन की दृष्टि से भी नहीं देखते.
We don't see one another with the vision of brother and sister either.
भाई बहन की दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो भी विकार की वासना आ सकती है आज की कली की दुनिया में.
इवन इफ समवन सीज अदर्स विद द विजन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर ही कैन हैव विशियस फीलिंग इन टुडेज आयरन एज वर्ल्ड.
अगर साथ साथ रहने लग पड़े साथ साथ सोने लग पड़े तो विकारी वासना जागृत हो जाएगी.
इफ दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर इफ दे स्टार्ट स्लीपिंग टुगेदर their vicious feelings will stir up.
तो वास्तव में हम ब्रह्मा की भी औलाद नहीं है.
So in reality, we aren't even Brahma's children.
क्या? जो कहें कि हम सिर्फ ब्रह्मा की औलाद हैं, वो सिर्फ सूर्यवंशी हैं.
Those who say that we are just Brahma's children aren't the Suryavanshi.
अगर आदि से अंत तक ब्रह्मा की औलाद है आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं बने तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाने वाले हो सकते हैं।
If they are Brahma's children from the beginning till the end, if they haven't become souls equal to brothers, they can be the ones who convert to other religions.
क्योंकि ब्रह्मा की गोद में हर धर्म की आत्मा पालना लेती है।
It is because the souls of every religion take sustenance on Brahma's lap.
सिर्फ सूर्यवंशी ही बच्चे ऐसे हैं जो ब्रह्मा की गोद में आज से अंत तक नहीं पलते हैं।
It is just the Suryavanshi children who aren't sustained on Brahma's lap from the beginning till the end.
वो सिर्फ पालना लेते हैं ज्ञान सूर्य शिव की।
They just take sustenance of the sun of knowledge Shiv.
ब्रह्मा के मुख से निकले हुए महावाक्यों की पालना लेते हैं।
They take the sustenance of the great sentences narrated through Brahma's mouth.
वो ब्रह्मा की गोद में पलने वाले नहीं है।
They aren't the ones who are sustained on Brahma's lap.
ब्रह्मा की गोद को याद करने वाले देह को याद करने वाले नहीं है।
They aren't the ones who remember Brahma's lap, Brahma's body.
हम सब आत्माएं हैं।
We are all souls.
उस भगवान वाक बाप की संतान है।
We are the children of that God the Father who narrates the knowledge.
हम ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी नहीं है।
We are brothers. We aren't brothers and sisters either.
बाकी कृष्ण कोई संतान था ऐसे नहीं कहेंगे।
As for the rest, it won't be said that Krishna was a child.
Krishna किसकी संतान था?
Whose child was Krishna?
वो तो कहते हैं कृष्ण भगवान था।
They say Krishna was God.
वास्तव में उनको पता नहीं है।
Actually, they don't know about it.
हम इस बात का प्रूफ देते हैं।
We give them its proof.
किस बात का?
Of what?
कि कृष्ण कोई भगवान नहीं है। प्रूफ ये है वो कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव।
कृष्ण isn't God in any way. The proof is they say ओ कृष्ण नारायण वासुदेव।
मन वासुदेव नारायण और कृष्ण एक ही आत्मा का नाम है।
It means Vasudev, Narayan and Krishna are the names of the same soul.
जो कृष्ण है वो ही नारायण है कहते हैं ना?
Krishna himself is Narayan. They say so, don't they?
और नारायण को सतयुग में ले गए हैं।
And Narayan has been shown in the golden age.
सूला कला संपूर्ण नारायण का राज्य कहाँ दिखाया है?
Where has the kingdom of Narayan, complete with 16 celestial degrees, been shown?
Satyug mein dikhaya hai.
It has been shown in the golden age.
So Satyug mein jis Narayan ka raji dikhaya hai, wo Narayan, Narayan banne se pehle kya tha?
So the Narayan whose kingdom has been shown in the golden age, what was he before becoming Narayan?
क्या था? अरे गीता के ही अनुसार क्या था?
What was he? अरे what was he according to the very Gita?
मनुष्यों ने जो गीता लिखी है उसके अनुसार क्या था? नारायण बनने से पहले।
What was he before becoming Narayan according to the Gita written by human beings?
नर था।
He was a man.
फिर उस नर को नारायण किसने बनाया?
Then, Who made that man into Narayan?
अरे ज्ञान देने वाला तो चाहिए।
अरे the one who gives the knowledge is certainly needed.
बनाने वाला तो चाहिए।
The one who makes him that is certainly needed.
तो साबित हो जाता है कि कृष्ण भगवान नहीं है।
So it is proved that Krishna isn't God.
नारायण भगवान नहीं है।
नारायण isn't God.
नारायण को नारायण बनाने वाला भगवान वो हो सकता है जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है।
He who never comes in the cycle of birth and death can be God, who makes Narayan into Narayan.
Ram Krishna ki atmaye to janam marna ke chakra mein aati hai.
The souls of Ram and Krishna certainly come in the cycle of birth and death.
Jo janam marna ke chakra mein aate hain, unko dher ki dher raniya ho sakti hai.
Those who come in the cycle of birth and death can have many queens.
कृष्ण को ढेर की ढेर रानियां दिखाई दी।
कृष्ण हैज बीन शोन विथ मेनी क्वींस।
अरे इतनी ढेर की ढेर रानियां, इतने ढेर के ढेर बच्चे पैदा हुए, फिर उसको एवर्ते और भगवान कैसे कहेंगे?
हाय, व्हेन ही हैड सो मेनी क्वींस, व्हेन सो मेनी चिल्ड्रन वर बोर्न थ्रू हिम, हाउ विल ही बी कॉल्ड एवर्ते और गॉड?
कहेंगे क्या? नहीं कह सकते।
Will he be called that? He can't be called that.
भगवान तो ever pure का टाइटल धारी है।
In fact, God is the one who holds the title ever pure.
और उसका प्रूफ है।
And there are proofs for it.
क्या प्रूफ है?
What is the proof?
दुनिया में प्रूफ मिलता है उसकी ever purity का।
The proof of his ever purity is found in the world.
क्या प्रूफ है?
शिवलिंग पूजा।
हाँ, सारी दुनिया में शिवलिंग की पूजा देखी गई है।
What is the proof, student? Shivling. Yes, the worship of Shivling has been seen all around the world.
जहाँ जहाँ पुरानी पुरानी खुदाइयाँ हुई हैं, जमीन की, वहाँ वहाँ लिंग मूर्तियाँ मिली हैं।
Wherever there have been old excavations, the ling idols have been found there.
उन लिंग मूर्तियों से ही साबित हो जाता है कि कृष्ण की मूर्ति इतनी पूजा प्राप्त करने वाली नहीं है.
It is proved by the ling idols themselves that Krishna's idols aren't worshipped to that extent.
लिंग मूर्ति बहुत पूजा सार्वभौम पूजा प्राप्त करने वाली है।
The ling idols are worshipped a lot universally.
तो जो सार्वभौम है वो ही भगवान है।
So the one who is universal, he himself is God.
कृष्ण राम अथवा कोई भी देवता भगवान नहीं हो सकता।
कृष्ण राम और नो अदर डीटी कैन बी गॉड।
देवताएं भोगी होते हैं या उनको एवर प्योर कहेंगे?
आर द डीटीज भोगी और विल दे बी कॉल्ड एवर प्योर?
जो भोगी होगा उसकी आत्मा भोग भोगने से क्षीणता की कला में जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी।
द वन हु इज अ भोगी Will his soul go towards the stage of decreasing celestial degrees by seeking pleasure or not? It will.
और भगवान सूर्य तो कभी कलाहीन होता ही नहीं।
And God, the sun, certainly never becomes devoid of celestial degrees.
सूर्य कलाओं में नहीं बांधा जाता।
The sun is never bound in celestial degrees.
चंद्रमा कलाओं में बांधा जाता है।
Whereas the moon is bound in celestial degrees.
ये कहते हैं कृष्ण चंद्र, राम चंद्र।
This is why it is said कृष्ण चंद्र, राम चंद्र।
तो जो चंद्र है वो भगवान कहाँ से हो गया?
So how can someone who is चंद्र, meaning the moon, be God?
चंद्रमा की तो कलाएं घटती रहती हैं, बढ़ती रहती
हैं। The celestial degrees of the moon continue to decrease and increase.
कलाएं घटती हैं, इसका मतलब पृथ्वी से प्रभावित होता है।
When the celestial degrees decrease, it means it is influenced by the earth.
पृथ्वी माने धरणी।
Earth refers to the land.
कन्याओं माताओं से प्रभावित होता है।
He is influenced by the maidens and mothers.
कन्याओं माताओं रूपी धरणी की परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है।
The shadow of the limelight maidens and mothers falls over the moon.
तो उसकी कला कम होती जाती है।
Then its celestial degrees keep decreasing.
नहीं तो चंद्रमा के ऊपर कला बढ़ने के लिए किसकी डायरेक्ट रोशनी चाहिए? सूर्य की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है तो चंद्रमा संपूर्ण प्रकाशित होता है।
On the contrary, whose direct light does it need to increase its celestial degrees? When the light of the sun falls on the moon directly, the moon becomes fully bright.
तब कितना कला संपूर्ण कहा जाता है? 16 कला संपूर्ण कहा जाता है।
It is said to be complete with how many celestial degrees then? It is said to be complete with 16 celestial degrees.
कृष्ण भगवान कैसे हो सकता है?
How can Krishna be God?
भगवान तो कभी भी कलाहीन होने का सवाल ही नहीं।
As a matter of fact, there is no question of God being devoid of celestial degrees at all.
न उसकी कलाएं घटती है न उसकी कलाएं बढ़ती।
His celestial degrees neither decrease nor do they increase.
उत्तरातीत कल्याण कल्पांतकारी कहा जाता है।
He is called कलातीत कल्याण कल्पांतकारी।
क्या?
What?
ऐसे भी नहीं है कि वो इस दुनिया में पार्ट नहीं बजाता है।
It isn't that he doesn't play a part in this world either.
क्या?
What?
पार्ट भी बजाता है लेकिन जो भी पार्ट बजाता है वो कलातीत होकर के पार्ट बजाता है।
He plays a part as well. However, whatever part he plays, he becomes kalatit and plays it.
जो भी पार्ट बजाएगा कर्मेंद्रियों से कर्म करेगा कलाओं में छिड़ता नहीं आ सकती।
Whatever part he plays, whatever actions he performs through the karmendriya, there can't be a fall in his celestial degrees.
क्या? कलाएं छीन नहीं होंगी।
His celestial degrees won't decrease.
माने आत्मा नीचे नहीं गिर सकती।
It means the soul can't degrade.
आत्मा उत्तरोत्तर ऊपर ही जाएगी।
It will just keep rising high.
वो इस दुनिया में आने के बावजूद भी पतित दुनिया में पतित तन में आने के बावजूद भी कभी कोई से प्रभावित नहीं होता।
Despite coming in this world, in the impure world and an impure body, he is never influenced by anyone.
कोई उसको अपने अंदर भी कंट्रोल कर नहीं सकता।
No one can take him under his control.
इसलिए जैन भी है आज तक भारत में भगवान आते हैं।
This is why it is also praised till today. God comes in Bharat.
और कोई देश में भगवान नहीं आते हैं।
God doesn't come in any other country.
भारत में जो भगवान आते हैं
भारत where God comes
वो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है।
That भारत is called the golden sparrow.
सोने की चिड़िया का मतलब क्या है?
What does golden sparrow mean?
उस सोने की चिड़िया को हर एक देश वालों ने अपने मुट्ठी में करना चाहा।
People from all the countries wanted to take that golden sparrow in their control.
अंग्रेजों ने भी मुट्ठी में करना चाहा, मुसलमानों ने भी मुट्ठी में करना चाहा।
The English wanted to take it in their control. The Muslims also wanted to take it in their control.
हर धर्म के लोगों ने अपनी मुट्ठी में करना चाहा, लेकिन कोई भी अपनी मुट्ठी में नहीं कर सका।
The followers of every religion wanted to take it in their control. However, no one was able to take it in their control.
कोई भी सदाकाल के लिए भारत को प्रभावित नहीं कर सका।
No one could influence Bharat forever.
ये भारत सिर्फ एक से ही प्रभावित होता है और वो है भगवान बाप।
This Bharat is influenced by only one soul and इट इज गॉड द फादर.
तो भारत किसकी औलाद हुआ?
सो हूज चाइल्ड इज भारत?
उसका नाम ही साबित करता है भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी.
हिज वेरी नेम प्रूव्स इट. भा मीन्स लाइट, द लाइट ऑफ नॉलेज.
रत माने लगा हुआ, काहे में लगा हुआ.
एंड रत मीन्स एंगेज्ड. एंगेज्ड इन व्हाट?
ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ.
एंगेज्ड इन लाइट ऑफ नॉलेज.
जब संपन्न स्टेज भारत की बनती है तो उसका नाम ही पड़ता है नारायण.
When Bharat attains the complete stage, the very name given to him is Narayan.
Ayan माने घर, नार माने ज्ञान.
Ayan means house and Nar means knowledge.
उसका कौन सा घर है?
What is his house?
ज्ञान जल ही उसका घर.
The water of knowledge itself is his house.
ऐसे भी नहीं कहेंगे परम धाम घर है.
It won't even be said that the supreme abode is his house.
परम धाम में तो ज्ञान होता ही नहीं.
There isn't knowledge in the supreme abode at all.
है इस दुनिया में, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए भी कोई भी कर्म करते हुए भी या कोई भी कर्मेंद्रिय से भी कर्म करते हुए भी बुद्धि कहाँ रत रहती है? भा.
He is present in this world, but while living in this world, while performing any actions, what? Even while performing actions through any karmendriya, where is his intellect engaged? Bha.
Roshni mein rat rehti
hai. That is, it is engaged in light.
Gyan jal mein raman karti hai.
It takes delight in the water of knowledge.
Mitti mein raman karne wali buddhi nahi hoti.
He doesn't have an intellect that takes delight in mud.
तो बोला जिसको इतनी रानियां कही गई हैं, वो भगवान कैसे हो सकता?
The one who is said to have so many queens, how can he be God?
भगवान रानियों को कंट्रोल करता है.
Does God control the queen?
जैसे दुनिया वाले कंट्रोल करते हैं.
Just as the worldly people control them.
ऐसे भगवान कंट्रोल करता है या स्वतः ही कंट्रोल हो जाती है, प्यार के वशीभूत हो जाती है?
Does God control them in that way? Or are they controlled? Are they enchanted by his love on their own?
भगवान कंट्रोल करता है.
Does God control them?
भगवान तो आकर सिखाता है यहाँ जितना दूसरों को डायरेक्शन में चला देंगे, दूसरों को कंट्रोल में रखेंगे, उतना वहाँ डायरेक्शन पर चलना पड़ेगा, कंट्रोल में रहना पड़ेगा.
In fact, God comes and teaches. The extent to which you make others follow your direction, the extent to which you control them here, you will have to follow their direction and be under their control to that extent there.
तो भगवान दूसरों को सिखाता, खुद नहीं करता, है?
So, does God teach others and doesn't he do it himself?
खुद करता होगा कि नहीं करता होगा? खुद ही ये कार्य करता है, क्या?
Will he himself do it or not? He himself does this task. What?
सारी दुनिया के ऊपर प्यार का शासन करता है.
He rules over the entire world with love.
मुसलमानों की तरह तलवार का शासन नहीं करता है.
He doesn't rule using a sword, meaning violence, like the Muslims did.
हिंसा का शासन नहीं करता है. अहिंसा परमो धर्म सिखाने वाला है.
He doesn't rule using violence. He is the one who teaches Ahimsa Paramo Dharma, meaning non-violence is the greatest religion.
वो परमपिता परमात्मा, उसको ये नहीं कह सकते कि उसकी रानियां हैं.
You can't say for the Supreme Father, Supreme Soul, that he has queens.
क्या? रानियां नहीं कहेंगे.
What? There won't be called his queens.
क्या कहेंगे फिर?
What will they be called?
पटरानियां कहेंगे. पटरानियां भी कृष्ण को होती है.
Student, पटरानीस. They will be called पटरानीस. It is Krishna who has पटरानीस too.
भगवान को थोड़े ही होती है.
God certainly doesn't have them.
अरे भगवान से प्यार करने वाले रानी कहे जाते हैं या प्यार होने के बाद जब शादी हो जाती है तब रानी कहे जाते हैं?
अरे are those who love God called queens or are they called that when they marry him after falling in love with him?
तब रानी कहा जाता है. तो अभी कौन सी स्टेज है?
When are they called queens? Students, after marriage. So which stage are you in now?
भगवान के साथ engagement किया है या रानी बन गए हैं?
Have you had an engagement with God or have you become his queen?
Engagement है?
You had an engagement.
कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमने भगवान से शादी कर ली.
No one will say, I have married God.
Engagement होना माने दिल लग गई.
To be engaged means you have set your heart on him.
दिल लगी हुई है लेकिन कोई शादी के बंधन में नहीं बंधी.
Your heart is set on him, but you aren't bound in the bondage of marriage.
तो रानियां राम कृष्ण को हो सकती है.
So, राम कृष्ण कैन हैव क्वीन.
भगवान रानी बनाने नहीं आता है क्योंकि रानी जो होती है वो राजा के कंट्रोल में होती है, अधीन होती है.
गॉड हैज़न्ट कम टू मेक क्वींस बिकॉज़ क्वींस आर इन द किंग्स कंट्रोल, दे आर सबॉर्डिनेट्स.
भगवान को अधिकारी बनाने आया है.
God has in fact come to make you into a ruler.
अधिकारी बनाने आया है या अधीन बनाने आया है? अधिकारी बनाने आया है.
Has he come to make you into a ruler or subordinate? Students, ruler. He has come to make you into a ruler.
जो खुद अधिकारी बनाने आया है वो दूसरों को रानियां कैसे बना देगा?
How will the one who himself has come to make rulers make others into queens?
हाँ, बोला है कि तुम बच्चे ऐसे समझो कि साहब आया हुआ है.
Yes, it has been said. Your children should consider that the master has come.
क्या? बाप कोई तुमको गुलाम नहीं बनाते हैं.
What? The father certainly doesn't make you a servant.
क्या? बाप गुलाम बनाने नहीं आया है.
What? The father hasn't come to make you a servant.
लेकिन तुम अपने अंदर ऐसा समझो कि ईश्वरीय सेवा के लिए हम बाप के गुलाम हैं.
But you should think this within that you are the father's servant for the ईश्वरीय service.
आत्माओं के अंदर की ये वृत्ति हो समर्पण भाव की.
The souls should have the feeling of dedication, समर्पण भाव within themselves.
भगवान समर्पण नहीं करता है. भगवान क्या करता है?
God doesn't make someone surrender before him. What does he do?
है? भगवान समर्पण करता है.
Does he surrender others?
भगवान अपना बनाता है.
Does he make them his own?
क्या करता है?
What does he do?
एक होता है समर्पण करना, सरेंडर करना.
One is to devote yourself, to surrender yourself.
और एक होता है खुशी खुशी अपना मन, अपना दिल बाप के प्रति अर्पित कर देना.
And the other is to happily devote your mind, your heart to the father.
तो अंतर नहीं है दोनों में? अंतर हो जाते हैं.
So, isn't there a difference between both? There is a difference.
कृष्ण को तो जब स्वयंवर होता है तो उसका नाम ही बदल जाता है.
In fact, when Krishna has a swayamvar, his very name changes.
कृष्ण को स्वयंवर होने के बाद नाम बदलता है.
When Krishna has swayamvar, his name changes.
और भगवान को तो इतनी आत्माएं, इतनी सजनियां अर्पण में करती हैं अपने को, परंतु भगवान का नाम नहीं बदलता.
On the contrary, so many souls, so many brides surrender themselves to God, but his name isn't changed.
उसका तो एक ही नाम शिव है जो कभी बदलता नहीं.
His only name is Shiv, which never changes.
सदा शिव है.
He is सदा शिव.
उसको कभी अकल्याणकारी नहीं कह सकते.
He can never be called malevolent.
हाँ, ऐसे कहेंगे कि लक्ष्मी नारायण को बच्चे थे.
Yes, it will be said that Lakshmi Narayan had children.
ऐसे नहीं कहेंगे राधा कृष्ण को बच्चे थे.
It won't be said that Radha Krishna had children.
हाँ, राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं.
Yes, राधे कृष्ण become लक्ष्मी नारायण after the स्वयंवर.
कहाँ की बात?
When is it about?
संगम युग की बात है, जबकि भगवान बाप आते हैं.
Student, the confluence age. It is about the confluence age when God the Father comes.
तो आकर के नरसे नारायण बनाते हैं.
He comes and makes man into Narayan.
कोई नरसे डायरेक्ट नारायण बनते हैं और कोई नरसे प्रिंस बनते हैं.
Some directly become Narayan from a man, while some become a prince from a man.
एक ही शरीर के द्वारा एक आत्मा नारायण का टाइटल धारण करती है. कौन सी आत्मा?
One soul takes on the title Narayan with the same body. Which soul?
राम की आत्मा.
राम soul.
और एक आत्मा प्रिंस का टाइटल धारण करती है.
And another soul takes on the title prince.
जिस प्रिंस का गायन होता है शास्त्रों
में. That prince is praised in the scriptures.
राधे अलग कुल की और कृष्ण अलग कुल का.
राधे belongs to a different clan and Krishna belongs to a different clan.
वास्तव में सतयुग में एक ही कुल होगा या अलग अलग कुल होंगे? वास्तव में एक ही कुल होता है.
Actually, will there be one clan? Or are there different clans in the golden age? There is certainly only one clan there.
ये संगम युग की बात है, जहाँ चंद्रवंशी भी होंगे ब्राह्मणों में और जहाँ सूर्यवंशी भी होते हैं.
It is about the confluence age where there are Chandravanshis as well as Suryavanshis among the Brahmins.
सतयुग में तो एक ही बच्चा पैदा होता है एक ही माँ बाप से.
In the golden age, only one son is born to one set of parents.
और वो माँ बाप एक ही कुल के होते हैं, सूर्यवंशी ही होते हैं या दो कुल के होते हैं?
And do the parents belong to the same clan? Are they Suryavanshis or are they from two clans?
एक ही कुल होता है.
The clan is the same.
वहाँ तो ये बात लागू नहीं होती.
This concept isn't applicable there.
हाँ, सतयुग में डायनेस्टी चलती है.
Yes, the dynasty continues in the golden age.
तो तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि अब माँ में कम याद करो.
So the father explains to your children, now remember me alone.
एक बाप को याद करो.
Remember the one father.
देह के सभी धर्म छोड़ मुझे एक बाप को याद करो तो तुम्हारे सभी पाप कट जाएंगे.
Leave all the bodily religions and remember me, the one Father. Then all your sins will be destroyed.
क्या?
What?
देह के सभी धर्म छोड़ दो. क्या क्या धर्म है देह के?
Leave all the bodily religions. What are all the bodily religions?
समझते मैं बाप हूँ.
Something. I am a father.
ये धारणा हुई ना बुद्धि के अंदर.
This is a dharana in his intellect, isn't it?
समझते मैं पति हूँ. मेरे कंट्रोल में चलना पड़ेगा.
Something. I am the husband. She will have to be under my control.
ये अंदर धारणा है ना बुद्धि में.
This is a dharana in his intellect, isn't it?
तो ये देह के धर्म है.
So these are bodily religions.
मैं बड़ा भाई हूँ, दादा हूँ.
I am the elder brother. I am dada.
सबको मेरी दादागिरी के अंदर चलना पड़ेगा.
Everyone will have to live under my dominance.
ये देह की धारणा हुई ना.
This is a dharana of the body, isn't it?
तो बाप बताते हैं ये देह के सभी धर्म
छोड़ दो.
So the father says, leave all these bodily religions.
फिर बाप को याद करो.
Then remember the father.
अब कितने यहाँ ऐसे बैठे हुए होंगे है जो ये धारणा पक्की करे क्या हम बाप नहीं हैं.
So, how many of such ones are sitting here who have this firm dharana? What? We aren't the father.
हम पति नहीं है. हम तो आत्मा आत्मा भाई भाई.
We aren't the husband, whereas we are in fact souls who are brothers for each other.
कितने यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जो ये धारणा पक्की करते हैं कि हम तुम्हारी अम्मा नहीं है. तुम हमारे बच्चे बच्चियां नहीं हो. हम तुम्हारे भाई हैं. आत्मा आत्मा भाई भाई.
How many of such ones are sitting here who have this firm dharana? We aren't your mother. You aren't our sons or daughters. Whereas we are your brothers. Souls mutually brothers.
Control में चलने और चलाने की बात खत्म हो जाती है.
The concept of keeping someone in control or being under someone's control ends.
तो ये देह के धर्म सब छोड़ने पड़े.
So you will have to leave all these bodily religions.
फिर याद करेंगे तो तुम्हारे सब पाप कटे. इसका मतलब अभी तक जो याद किया वो पाप नहीं कटे.
If you remember him after that, all your sins will be destroyed. It means the remembrance which we had till now, weren't sins destroyed through it?
बस बेकार गया. ये तो बड़ा भारी घाटा हो गया.
Did it go in vain? Well, that's a great loss.
ऐसी धारणा अभी तक किसने पक्की की है?
Who has made such dharana firm until now?
ब्राह्मण ने. माने हम ब्राह्मण ही नहीं है. हैं? रामलियात्मा ने. रामलियात्मा ने धारणा पक्की की है.
Student, the Brahmins. The Brahmins. It means we aren't Brahmins at all. Student, Ram's soul. Has Ram's soul made this dharana firm?
तब पाप कट गए राम वाली आत्मा के?
नहीं.
Have all the sins of Ram's soul been destroyed? No.
अगर है राम वाली आत्मा ने 100% ये धारणा धारण कर ली हो. आत्मा आत्मा भाई भाई. मेरी कोई पत्नी नहीं. मेरा कोई बच्चा नहीं. मेरा कोई दूसरा देह का संबंध है ही नहीं. तो रिजल्ट क्या होनी चाहिए?
Had Ram's soul made this dharana firm 100%, we are souls mutually brothers. I don't have any wife. I don't have any child. I don't have any other bodily relations at all. Then what should the result be?
सारे पाप कट जाते हैं.
ऑल द सिंस आर डिस्ट्रॉयड.
पाप आत्मा टाइटल खत्म हो जाता है.
देयर टाइटल सिंपल सोल एंड्स.
तो रामवाली आत्मा का पाप आत्मा टाइटल खत्म हो जाए तो शिव बाबा प्रवेश करेगा? प्रवेश ही नहीं करेगा.
So, if the title sinful soul of Ram's soul ends, will Shiv Baba enter him? He wouldn't enter him at all.
हाँ, जब तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, तो तुम सतो प्रधान बन करके स्वर्ग में चले जाएंगे.
Yes, when all your sins are destroyed, you will become sato pradhan and go to heaven.
आत्मा सतो प्रधान बनेगी. और कहाँ अनुभव करेगी?
The soul will become sato pradhan. And where will it experience itself to be?
स्वयं स्थिति में सदैव अनुभव करेगी.
It will always experience itself to be in the stage of the self.
स्वयं स्थिति में सदैव अनुभव करना माना स्वर्ग में जाना.
To always experience yourself in the stage of the self means to go to heaven.
स्वर्ग में जले गई आत्मा इसका प्रूफ क्या देखने में आएगा?
What is the proof that a soul has reached heaven?
अपने को भी देखने में आएगा, दूसरों को भी वो प्रूफ देखने में आएगा. क्या प्रूफ?
You yourselves will see that proof and others will also see it. What proof?
आत्म की स्थिति में स्थित रहने वाला कभी भी दुखी नहीं हो सकता.
स्टूडेंट कंटेंटमेंट हैप्पीनेस. यस द वन हु इज स्टेबलाइज्ड इन द सोल कॉन्शियस स्टेज कैन नेवर बी सैड.
सदा सुखी रहेगा.
ही विल ऑलवेज बी हैप्पी.
नरक में तो अथाह दुख है.
देयर इज इमेंस सोरो इन हेल.
एक दुख खत्म होता है और दूसरा दुख शुरू हो जाता है. दो दुख खत्म होते हैं और चार दुख शुरू हो जाते हैं.
When one sorrow ends, another begins. When two end, four begin.
वहाँ स्वर्ग में तो दुख का नाम निशान नहीं रहेगा.
There won't be the name or trace of sorrow there in heaven.
क्या? उसको कहेंगे पुण्यात्मा देवता. कि पुण्य ही पुण्य है जिन पुण्यों को 21 जन्म तक उस आत्मा को भोगना है.
What? People there will be called a noble soul, a deity, as there are noble deeds and only noble deeds there. The soul has to enjoy the fruit of those noble deeds for 21 births.
पाप का नाम निशान उस आत्मा में नहीं है.
That soul doesn't have the name or trace of sin.
इसलिए 21 जन्मों तक दुख का नाम निशान उसके जीवन में नहीं हो सकता.
This is why there can't be the name or trace of sorrow in his life for the 21 births.
Om Shanti.
Om Shanti.